अर्पिता की बात सुनते ही अभिमन्यु ने धीमी आवाज में कहा, अर्पिता, हमने आपकी और समर्थ की शादी के लिए ये कुछ लीगल पेपर्स बनवाए हैं ताकि आप लोग ऑफिशियली मैरिड हो जाएं। हम जानते हैं कि समर्थ आपको बहुत प्यार करते हैं और वो सारी ज़िंदगी आपका साथ निभाएंगे, लेकिन फिर भी हम किसी दूसरे इंसान को कुछ भी उल्टा सीधा कहने का मौका नहीं देना चाहते, इसलिए हम चाहते हैं कि आप दोनों इस पेपर पर साइन करें और ऑफिशियली हस्बैंड वाइफ हो जाएं। समर्थ अभिमन्यु की ये बात सुनकर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, एक तरह से देखा जाए तो आपने बहुत अच्छा किया। एक्चुअली हम भी ये सोच रहे थे, बट हमें ऐसा लगा कि पहले हम सब कुछ ठीक कर लें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपने हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, थैंक यू सो मच। समर्थ इतना बोलकर मिस्टर भाटिया के हाथ से उस पेपर को लिया और उन पर साइन करने लगा। उसने साइन करने के बाद अर्पिता को वो पेपर्स दिए। अर्पिता अभिमन्यु और इप्सिता की तरफ देख रही थी। इप्सिता अर्पिता के बगल में बैठी और उसने अर्पिता के कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे दिलासा देते हुए कहा, आपकी नई लाइफ स्टार्ट हो रही है अर्पिता, इतना क्या सोच रही हैं आप, साइन करिए। अर्पिता ने धीरे से अपना सिर हिलाया और उसने उस पेपर पर साइन कर दिया और मिस्टर भाटिया ने पेपर्स को लेते हुए कहा, ओके मिस्टर अभिमन्यु, हम इन पेपर्स को आज ही रजिस्ट्रेशन ऑफिस में सबमिट कर देंगे। आज से आप दोनों ऑफिशियली हस्बैंड वाइफ हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अर्पिता ने जैसे ही ये बात सुनी वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई और समर्थ की तरफ देखने लगी। समर्थ के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो समर्थ को कुछ ऐसा मिल गया है जो वो बचपन से चाहता है। उसके चेहरे की खुशी बता रही थी कि वो कितना ज़्यादा खुश है। समर्थ और अर्पिता एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे, जिन्हें देखकर इप्सिता काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई। उसने अर्पिता को अपने गले लगाकर उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा। तभी अभिमन्यु ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और उसने समर्थ के फ़ोन पर कुछ मैसेज सेंड किया। समर्थ उसके उस मैसेज को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ये क्या है अभी? अभिमन्यु ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आप दोनों का वेडिंग गिफ्ट हमारी तरफ से। इतना बोलकर अभिमन्यु चुप हो गया। समर्थ उसकी तरफ देखते हुए बोला, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अभिमन्यु ने कहा, बिल्कुल ज़रूरत थी, और वैसे भी आप ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं जैसे हमने बहुत बड़ी चीज़ की हो। वैसे भी छोटा सा गिफ्ट हमने हमारी अर्पिता को दिया है। जैसे ही अभिमन्यु ने ये बात कही, अर्पिता उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या दिया है भाई आपने? समर्थ अर्पिता की बात का जवाब देते हुए बोला, आपके भाई ने हमारे हनीमून के लिए मालदीव की ट्रिप प्लान की है। जैसे ही अर्पिता ने ये बात सुनी वो शर्मा गई और इप्सिता की तरफ देखने लगी। इप्सिता ने अर्पिता का हाथ कसकर पकड़ लिया। वो सब आराम से बात कर रहे थे। तभी समर्थ ने अभिमन्यु को गले लगाते हुए कहा, इतना बड़ा गिफ्ट, अब थोड़ा तो सेलिब्रेट करना बनता है ना, आप रुकिए, मैं भी सेलिब्रेशन की तैयारी करता हूँ। इतना बोलकर समर्थ अपने फ़ोन से खाने का ऑर्डर देने लगा। अर्पिता वहीं इप्सिता के साथ बैठी हुई थी। इप्सिता ने अर्पिता का हाथ कसकर पड़ते हुए कहा, अर्पिता आप खुश हैं ना? अर्पिता ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, भाभी हम खुश तो हैं, बट हमें ऐसा लग रहा है कहीं मासा। अर्पिता ने जैसे ही मासा का नाम लिया तो इप्सिता ने उसके हाथ को कसकर पड़ते हुए कहा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए अर्पिता, हम जब तक यहाँ हैं हम मासा का पूरा ध्यान रखेंगे। आप तो अपने भाई सा को जानती नहीं है ना, आपको और मासा से कितना प्यार करते हैं। जैसे ही इप्सिता ने ये बात कही तो अर्पिता ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। इप्सिता अर्पिता से मासा के बारे में ही काफ़ी सारी बातें कर रही थी। उन दोनों को बातें करते देखकर समर्थ और अभिमन्यु भी उन दोनों की तरफ ही देखने लगे। वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु वहीं घर पर चाचा चाची को छोड़कर आ गया था और उसने अपना फैसला भी सुना दिया था, लेकिन चाचा चाची दोनों ही बहुत बुरी तरह से तिलमिला उठे थे। उन्हें अभिमन्यु का फैसला ज़रा भी पसंद नहीं आया था। वो लोग महल से जाने के मूड में नहीं थे, बल्कि वो दोनों ही अपने रूम में थे और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी लग रहे थे। वहीं मुनीम जी अभिमन्यु के ऑर्डर के अकॉर्डिंग सीधे प्रॉपर्टी के कुछ कागजात लेकर सीधे उनके रूम में पहुंचे। जैसे ही वो उन दोनों के सामने आकर खड़े हुए, पल्लवी उन्हें गुस्से से घूरते हुए देखने लगी। उसने नरेंद्र का हाथ पकड़ते हुए कहा, आप इन्हें घूरते हुए क्या देख रहे हैं, धक्का मारकर उन्हें यहाँ से बाहर निकालिए। जैसे ही पल्लवी ने ये बात कही, नरेंद्र उसे गुस्से से घूरते हुए देखने लगा। मुंशी जी ने आगे बढ़कर वो कागजात नरेंद्र के हाथ में देते हुए कहा, ये रहे आपकी प्रॉपर्टी के पेपर्स, हमें लगता है कि अब आप लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर राजा साहब वापस आ गए और उन्होंने आपको यहाँ पर देखा तो ये हम सबके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए बेहतर होगा कि आप लोग चुपचाप बिना कोई लड़ाई झगड़ा किए यहाँ से बाहर निकल जाएं। जैसे ही उन दोनों ने मुनीम जी की ये बात सुनी, वैसे ही पल्लवी तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोली, आप कुछ बोलेंगे तो हम यूं ही चुपचाप खड़े होकर तमाशा देखते रहेंगे? आपका भतीजा आपको इस तरह से कैसे महल से निकाल सकता है? वो आपसे छोटे हैं, आप उसकी बात नहीं मानेंगे, बोल दीजिए इस मुनीम से। नरेंद्र ने पल्लवी को गुस्से से घूरते हुए देखा और उसे चुप रहने के लिए कहा, लेकिन पल्लवी इतनी आसानी से कहाँ चुप रहने वाली थी। उसने मुनीम को धक्का देते हुए कहा, निकल जाइए हमारे कमरे से, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, हम हमेशा यहीं रहते थे और हम आज भी हमेशा यहीं रहेंगे। नरेंद्र ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, बेवकूफी मत करो पल्लवी, चलो यहाँ से, और वैसे भी हमें हमारा हिस्सा मिल गया है। पल्लवी उसकी ये बात सुनकर गुस्से से उसे घूरते हुए देखने लगी और उसने अपने मन में कहा, ये हो क्या गया है नरेंद्र को, वो ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। पल्लवी को समझ नहीं आ रहा था और उसने अपने कपड़े और बैग को उठाया और वो रूम से बाहर निकल गई। नरेंद्र भी अपने रूम से बाहर निकला और वो लोग वहां से जाने के लिए रेडी हो गए थे। उनका सामान पहले ही गाड़ी में रखवा दिया गया था। दोनों घर से बाहर निकलने से पहले मासा के कमरे की तरफ देखने लगे। मासा वहीं अपने कमरे के बाहर खड़ी थी और उन दोनों को वहां से जाते हुए चुपचाप देख रही थी। जैसे ही उन्होंने देखा कि पल्लवी और नरेंद्र दोनों वहां से जा रहे हैं तो मासा ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की और चुपचाप उन्हें वहां से जाने दिया। वो लोग जैसे ही वहां से बाहर निकले, मासा ने एक गहरी सांस ली और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। वहीं दूसरी तरफ अर्पिता, इप्सिता, समर्थ और अभिमन्यु सब एक साथ थे और वो सब एक साथ काफी ज्यादा खुश थे। दोनों कपल एक साथ काफी अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। तभी इप्सिता का फोन बजा। इप्सिता ने जैसे ही अपने मोबाइल फोन की रिंगटोन को सुना, वो अपने फोन की तरफ देखने लगी। उसने अभिमन्यु की तरफ देखा, वो समर्थ के साथ वहीं पर खड़ा था। इप्सिता को ऐसा लगा कि किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए उसने जल्दी जल्दी फोन को रिसीव किया और बात करने के लिए साइड में चली गई। लेकिन इप्सिता को जैसा लग रहा था वैसा बिल्कुल भी हुआ नहीं था। अभिमन्यु ने तुरंत उसको नोटिस कर लिया था। जैसे ही इप्सिता थोड़ी देर बाद फोन पर बात करने के बाद वापस आई, वो उसके चेहरे की तरफ ही देखता रह गया क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रेस्ड में लग रही थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखकर अभिमन्यु समझ गया कि जरूर कुछ तो बात है। अभिमन्यु ने इप्सिता का हाथ पकड़कर अपने करीब किया और उसके कान के पास जाकर धीमी आवाज में कहा, क्या बात है इप्सिता, आप किसी बात को लेकर परेशान है क्या?
इप्सिता ने जैसे ही अभिमन्यु की ये बात सुनी, उसने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं तो हम भला क्यों परेशान होंगे, हम तो अर्पिता और समर्थ के लिए आज बहुत खुश हैं। फाइनली वो दोनों जो एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं, आज वो लोग ऑफिशियली एक हो गए हैं और शादी के बंधन में बंध गए हैं। आप कहाँ यहाँ पर हमसे बात कर रहे हैं, अभी उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए ना। इतना बोलकर इप्सिता ने अभिमन्यु का हाथ पकड़ा और वो समर्थ और अर्पिता के बगल में आकर खड़ी हो गई और मुस्कुराते हुए उन दोनों से बातें करने लगी।